भूरि दण्डवतो दुभटारति अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्वदिके तव गणे गणना। अंगश्यामलिम छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरम् जड्डञ्जागुडरोचि साङ्विदधतनपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनम् हृदि लसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजम् ध्यायेम् ताम् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीम् त्वाम् शरणम् प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणाय गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय परभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चर।
चंद्रिका जी गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के स्वकीय परकीया के संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर का विचार। जी गोस्वामी हमारे तत्वाचार्य और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी रसाचार्य, इन्होंने अपनी दृष्टिभंगियों से एक ही तत्व का, तत्व की दृष्टि से और रस की दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत किया है, इसलिए दोनों में भेद नहीं है। हमारे रूप सनातन ने कहा कि गोलोक वृंदावन में जो लीला नित्य निरंतर होती है, इस जगत में प्रकटित नहीं होती, उसको अप्रकट लीला कहा। वही लीला ब्रह्मा जी के एक दिन में एक समय में अवतरित इस जगत में होती है, तो उसे प्रकट लीला कहते हैं। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, कुछ थोड़ा सा अंतर यह है, जैसे कि एक व्यक्ति इंग्लैंड में रहता है या हिम प्रदेश में रहता है, और वो यदि गर्म प्रदेश में आ जाए तो क्या अंतर होगा? कपड़े का अंतर हो जाएगा। हिम प्रदेश में रहने पर गर्म कपड़े से ढका रहेगा, और यहां आने पर वो कपड़े सब छोड़ करके साधारण रूप में वो पहनेगा, यही अंतर होगा। तो नित्य अप्रकट लीला में जो लीलाएं हैं वो शुद्ध रूप से यहां पर हैं, किंतु माया के पर्दे वाले उसको देख नहीं, उसको अपने अनुसार में अपने अधिकार के रूप में कुछ माइक चीज के रूप में दर्शन कर, भजन करते करते नाम और हरि कथा का श्रवण करके संतों के की प्रेममयी सेवा के द्वारा जब संपूर्ण रूप में चित भाव उनका उदित होगा, अथवा जितना उदित होगा उतना ही विशुद्ध रूप में वे देखेंगे, और जितना नहीं है उतना नहीं देखेंगे। बस दोनों में रूप सनातन के विचार से प्रकट लीला प्रकट लीला में कोई भी भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है, किंतु एक प्रपंचातीत प्रकाश में और एक प्रपंच के अधीन प्रकाशित है, प्रपंच में स्थित है। तो केवल वहां प्रपंच के अतीत एक प्रकाश है, दूसरा प्रपंच में स्थित प्रकाश है, केवल यही भेद है। प्रपंचातीत प्रकाश में दृष्टि और दृष्टिगत संपूर्ण विशुद्धता है, वहां पर दृष्टि जिसको देखा जा रहा है, जिस दृश्य को, भगवान को, भगवान के लीलाओं को, वहां पर वो शुद्ध है, और दृष्टि, दृष्टिगत मैंने क्या है, जो देख रहा है उसकी भी संपूर्ण शुद्धता है, दोनों शुद्ध है, जो देखने वाला और जो देखा जा रहा है, दोनों वहां पर लीलाएं विशुद्ध रूप में है। बड़े सौभाग्य से कृष्ण की कृपा होने पर वह लीला इस प्रपंच में उदित होती है। अब वो संपूर्ण प्रपंच संबंध से संपूर्ण रूप से अलग होती है और यहां पर तो जो लोग बड़े सौभाग्य से कृष्ण की कृपा यदि किसी पर हुई या भगवत भक्तों की कृपा हुई, जो लोग प्रपंच को और प्रपंच के संबंधों को संपूर्ण रूप से त्याग कर छोड़कर उसे शुद्ध होकर के चित जगत में प्रवेश करते हैं, यदि उनमें साधनकालीन साधन के समय में रस वैचित्र की आस्वादन की यदि सिद्धि रहे, तभी गोलोकी संपूर्ण विशुद्ध लीला का वो दर्शन और आस्वादन कर सकते। ये समझ में नहीं आएगा, अब इसको मैं क्या कहूं, ये समझना बड़ा भारी थोड़ा सा कठिन है। जो कुछ साधन करते हैं वो लोग तो समझेंगे, आज जो साधन नहीं करते हैं वो लोग इसको समझ नहीं सकेंगे। तब समझो, हम और थोड़ा सा विस्तार करके कह देते हैं, भगवान की कृपा से संतों के समागम होने पर उनके विचारों को सुन करके हम शुद्ध रूप में गुरु पदाश्रय करते हैं। शुद्ध रूप में गुरु पदाश्रय करना भी बड़े सौभाग्य की बात है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की वांछा के लिए, जागतिक प्रतिष्ठा और रुपया पैसा वस्तु के लिए गुरु के यहां जाना वो एक बात है, वो शुद्ध नहीं है। केवल परमार्थ की लालसा से कृष्ण के ब्रज प्रेम की तरफ में लक्ष्य रख करके उसकी प्राप्ति के लिए यदि हम गुरु करते हैं, तब तो ये शुद्ध गुरु करना होगा। ये भी भगवान या भगवान के भक्तों की कृपा से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। जब ऐसे भक्तों का संग हुआ, गुरु कर्ण हुआ, तो उनसे इन सब तत्वों को, साधन किसको कहते हैं, साध्य किसको कहते हैं, कैसे साधन करना चाहिए, उसको समझ बूझ करके उनकी कृपा से तो वो साधन में स्वर्णं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवन इत्यादि में लगते हैं। लगते लगते धीरे धीरे धीरे, जैसे कपड़े में साबुन लगाने से मैला साफ होता है, ऐसे जीवों के अंदर में जो अनर्थ है, जागतिक जो चिंताएं हैं, जागतिक मलिनता है, मैं ये शरीर हूं, मैं शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना कहता हूं, और जागतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा कनक कांचन कामिनी के लिए हम जो कुछ करते हैं, तब तो अशुद्ध हो गया। ये सब अनर्थ हैं, ठीक रूप से भजन करते करते ये अनर्थ दूर हो जाएंगे, तब वही श्रद्धा निष्ठा होगी, फिर उसी से रुचि भगवान में आएगी, फिर भगवान के प्रति आसक्ति आएगी, आसक्ति होने के बाद में भगवान अनुग्रह करके अपनी सब जो स्वरूप शक्ति है उसकी लादनी और संबित की सार वृत्ति को जीव के हृदय में प्रवेश करा देते हैं। इसी का नाम शुद्ध सत्व होना है। जब यह हो जाता है तो अपने आप जलधारावत अविच्छिन्न गति से चित्त की वृत्तियां सब भगवान के चरणों में लगने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद में ऐसी सिद्धि होने के बाद में प्रेम होता है। अब साधन काल में जैसा वो प्रेम करेगा, जैसे भक्तों का संग हो रहा है या उसके हृदय में जैसे प्रेम की पोटेंसी है, उनके अनुसार में साधुओं के संग होने से यदि वैकुंठ को पार करके ब्रज की भावना है, और वैसा गोपियों जैसा, गोपों जैसा, सखाओं जैसा, यशोदा मैया जैसा साधना, तब तो वो गोलोक वृंदावन में पहुंच करके कृष्ण को भी देखेगा, उनकी लीला को भी देखेगा, तो वो उसकी दृष्टि शुद्ध होगी और कृष्ण की लीलाओं को भी शुद्ध रूप में देखेगा। जिसने साधन अवस्था में नारायण और लक्ष्मी की उपासना की या सीताराम की उपासना की स्वकीय भाव से, अर्थात द्वारकाधीश का भजन किया, द्वारकाधीश और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं समझा, वो लोग जब सिद्ध भी हो गए तो वह द्वारका तक में आवत करेंगे। उनमें कुछ लोग जाएंगे बैकुंठ, कुछ लोग तो मुक्ति में जाएंगे, कुछ लोग बैकुंठ में, कोई रामलोक में जाकर के उनकी हनुमान के अधीन रह करके सेवा करेगा, और कुछ लोग द्वारका में जाकर के शांत दास्य सख्य, वो भी सख्य माने आधा और बासल्य का आधा में तक पहुंच करके वहीं रह जाए। और जिन्होंने हमारे रूप गोस्वामी के दिखलाए हुए पद्धति से भजन किया वो लोग ब्रज में जाकर के पहुंचे, उनकी सिद्धि वहां से। विशेष करके जिन्होंने गोपियों को लक्ष्य करके गोपियों जैसी साधना और कृष्ण के चरणों में गोपियों जैसा प्रेम किया, उनकी दृष्टि और भी शुद्ध और भी शुद्ध निर्मल होगी और कृष्ण के लीलाओं को वो संपूर्ण में विशुद्ध रूप में दर्शन करेंगे। उस समय में कृष्ण कृष्ण के लीला और परिकर विशुद्ध जैसा लीला कर रहे हैं ठीक उसी रूप में ये देखेगा भी और उसको आस्वादन करेगा। जो लोग साधन अवस्था में ऐसा नहीं किया वो लोग सिद्ध अवस्था में ऐसा नहीं दे सकते। जिन्होंने सब देवताओं की उपासना की वो इसी लोक में रह जाएंगे, फिर वो धनी गरीब अमीर इस रूप में आएंगे। जो लोग इससे बढ़े वो मुक्ति तक जाएंगे, उससे यदि आगे बढ़े स्वकीय भाव से तो द्वारका तक पहुंचे, इससे आगे नहीं पहुंचे। इसलिए साधन के समय में जैसे उन्नत कोई व्यक्ति होगा, जैसा उच्च साधन करेगा, उसकी दृष्टि भी निर्मल, तब कृष्ण की लीलाओं को शुद्ध रूप में दर्शन कर सकेगा। अच्छा, उसमें वे गोलोक की संपूर्ण विशुद्ध लीला का दर्शन और आस्वादन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बृहद भगवतामृत सुना, उसमें हम लोगों ने देखा वो कौन गोप कुमार, गोप कुमार ने चारों तरफ में भ्रमण करके भी अंत में किसी तरह से वृंदावन में पहुंचा, द्वारका से भी पहुंच करके उतर करके भी यहां आया, बैकुंठ से भी उतर करके एक बार आया और भी बीच बीच में आया। यहां आने के बाद में उसको शुद्ध गुरु मिले और उनके गुरु के संपर्क में आकर के जैसा उनका गुरु थे सख्य भाव का, वो यहां पर उसी तरह से साधन किया। साधन करने के बाद में देखा चला जा रहा है ऊपर, कहां चला जा रहा है देखते देख, अरे मैं तो ब्रज में आ गया। कृष्ण गोचारण करने के लिए गए, वहां पर गोचारण देखने लगा और उनके दल में सम्मिलित, कृष्ण उसको पकड़ करके और मूर्छित होकर के दोनों गिर, तभी उसके हृदय में वो भाव संचरित नहीं हुआ, तब उसके सिर पर गुरु जी तब वो वहां गया। साधन करने से भी नहीं हुआ, ज्ञान मात्र हुआ, विज्ञान नहीं हुआ, तब गुरु जी ने हृदय से लगा लिया, उसके ऊपर में सिर हाथ रख दिया और वैसा हो जाए कह दिया बस। ये ऐसे ही साधन भजन होते, इसमें एक जन्म ही नहीं लाखों जन्म लग सकते हैं, लाखों जन्म लग जाएंगे। यदि ये संभव हो गया तो समझो जी भगवान की बड़ी कृपा है, एक जन्म में तो होने की बात ही नहीं। अधिक से अधिक इस जन्म में संस्कार हो सकते हैं और संस्कार के बाद में जो होना है वो तो होगा पीछे। ऐसे पात्र सुदुर्लभ होते हैं, बहुत सुदुर्लभ, साधक ही नहीं सुलभ है, ऐसे साधक ही नहीं मिले। एक लड़का बीमार था, बहुत बीमार, अब मरा अस्पताल में आप प्राण जाने वाले हैं और भैया एकदम पागल हो गई उसको देखकर। मैं गया देखने के, देखा जैसे ये भी पागल है, बच्चा तो मरा ही। हमने कहा ये छटपट कर रही हैं, यदि भगवान आए और कहें तुमसे ये मैं बच्चे को ले जा रहा हूं तुम यहां रहो, इसके बदले में तुम यदि प्रेमा भक्ति चाहती हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो लड़के को हमको ले जाना है, तो आप करेंगी क्या, क्या मांगेंगी, प्रेमा भक्ति लेना चाहेंगी या इस लड़के को, न कि हम लड़के को चाहेंगे। देखो ना ऐसी माया है सभी का, कभी कभी दो चार एक आदमियों को छोड़कर के बाकी सभी का ऐसी है ना? हमारे समझ में नहीं आएगा उस समय, अभी नहीं समझ में आएगा ये कृष्ण प्रेम कितने दुर्लभ वस्तु। लड़का तो मरेगा नहीं, उसका अवस्थांतर हो जाएगा, यहां से वहां पर पहुंच जाएगा, मरा तो नहीं। और जो कृष्ण प्रेम हाथ में आया था वो भी चला गया, और लड़का तो आज न कल फिर जाएगा, किंतु आदमी नहीं समझता। तो साधन समय ये सब कठिनाइयां, हम अपने भोगों में इतने लग जाते हैं जो कृष्ण प्रेम की गरिमा को समझ नहीं पाते, उपलब्धि नहीं कर पाते। तो ऐसे पात्र दुर्लभ होते हैं जगत में। दूसरी ओर जो लोग साधक प्रपंच में रहते भी भक्ति की सिद्धि लाती आता स्वरूप सिद्धि, उनकी वस्तु सिद्धि हो गई है, हैं? और इनकी अभी स्वरूप सिद्धि नहीं है, जगत में है, सिद्धि लाकर के कृष्ण की कृपा से चिद रस की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात विशुद्ध सत्व स्वरूप शक्ति की वो वृत्ति आई है, यहां तक हुआ है, स्वरूप सिद्धि हो गई है, किंतु अभी वस्तु सिद्धि नहीं हुई है। वे भौम गोकुल की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को, गोकुल की लीला में गोलोक की लीला को दर्शन करते हैं। माने क्या, यहां जो लीला चल रही है उसी को देखते हैं कि यह गोलोक में भी चल रही है, दोनों की अभिन्नता को ग्रहण कर लेंगे, करेंगे। और वहां वाले क्या हैं, वो विशुद्ध रूप में वहां पर अनुभव कर रहे हैं, कौन जो यहां से चले गए हैं, उन्हें वो वहां पर पहुंच करके दोनों लीलाओं की, वहां के दो लीला ही नहीं है, एक ही लीला। और यहां वाले गोकुल की लीला देख रहे हैं, और इसी को गोकुल की लीला विशुद्ध रूप में देखते हैं। इन दोनों प्रकार के अधिकारियों में कुछ तात्पर्य है, फिर भी तात्पर्य है, जो वहां पर पहुंच गए हैं वस्तु सिद्धि, और यहां वाले जिनको स्वरूप सिद्धि है, यहां वाले ही गोकुल की लीला में गोलोक दर्शन करते हैं। उन अधिकारियों में कुछ तात्पर्य यही है, वस्तु सिद्धि नहीं होने तक गोलोक लीला के दर्शन में कुछ कुछ माइक प्रतिबंध रहते हैं, इन्हीं लोगों की दृष्टि में कुछ माइक प्रतिबंध होता है, वहां नहीं होता किंतु इन लोगों में होता है।
स्वरूप सिद्धि होने के बाद
भी हाँ,
इस जगत में जब तक है,
जब तक है तब तक रहेगा। जैसे उस ठंड प्रदेश में अधिक ठंड है ना, तो कपड़ा अधिक पहने हैं, गर्म के कपड़े, और यहां आने पर गर्मी लगती है तब खोल देते हैं, खाली शरीर है, यहां वहां पर खाली शरीर निर्मल, और यहां माया का प्रलेप है, इसलिए माइक दृष्टि से देखने के लिए बाध्य होते हैं। वे लोग क्या करेंगे, कृष्ण की जन्म लीला कौन इस जगत में है, इस जगत में रहने वाले भक्त जो है स्वरूप सिद्ध, वो उनकी बाल्य लीला को देखेंगे, फिर पौगंड लीला को देखेंगे, फिर किशोर लीला को देखेंगे, ये तीनों को बाध्य है देखने के। और वहां पर जो जिस भाव में है उसी को, विशेष करके सभी में वो नित्य किशोर लीला कृष्ण दिखे, ये उसमें दोनों में भेद है। दूसरी तरफ स्वरूप सिद्धि के तात्पर्य से स्वरूप का दर्शन, दूसरी तरफ में वहां तो सिद्धि हो गई है, और यहां जिसको स्वरूप सिद्धि का जो तात्पर्य है जितना है तप हुआ है उतने देखेगा, कोई क्लास मैट्रिक तक पढ़ा तो अंग्रेजी उतना ही अधिक बोल पाएगा, जो बीए है थोड़ा अंग्रेजी बोल सकता है या भाषा बोल सकता है, जो एमए वाले हैं वो कुछ और बोल सकते हैं, जो एमए पीएचडी हैं डीलिट हैं वो और भी धड़ाधड़ बोल रहे, आप जो लोग सब समय अंग्रेजों के निकट रहते हैं वो कैसे बोलेंगे मातृभाषा जैसा। तो इसमें तात्पर्य है अपनी शिक्षा के अनुरूप में चीजें को समझने का तात्पर्य और देखने का तात्पर्य होता है। इस स्वरूप दर्शन के तात्पर्य के अनुसार भक्तों के गोलोक दर्शन का तात्पर्य भी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। जिसका जैसा स्वरूप स्वरूप सिद्धि है उसी के अनुरूप में वो उसी के तात्पर्य से इस जगत में जो कृष्ण की प्रकट लीला चल रही है उसमें देखने में भी तात्पर्य होगा। रूप गोस्वामी एक तरह से देखेंगे, जी गोस्वामी एक तरह से देखेंगे, सनातन गोस्वामी एक रूप में देखेंगे, हमारे बलदेव विद्याभूषण एक रूप में देखेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती एक रूप में देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर जी कुछ कुछ जरूर इस जगत में तात्पर्य हो, उस जगत में पहुंचने पर वहां पर प्रेम का तात्पर्य है और यहाँ पर साधन के अनुसार में सिद्धि का तात्पर्य है। इस रूप में लोग देखने के लिए बात है
दृष्टि का तात्पर्य इस जगत में।
नितांत जो मायाबद्ध हैं, अत्यंत जो मायाबद्ध जैसे हम लोग हैं, भक्ति चक्षु उसका नहीं लगता, आंख भक्ति की आंख जो है वो नहीं लगती। इस समय जड़ी विचार के अनुसार में वो जड़ी विचार करने के लिए बाध्य है। नितांत मायाबद्ध व्यक्ति चक्षु भक्ति चक्षु से रहित होता है, उसमें कोई कोई केवल माया की विचित्रता में आबद्ध होते हैं। आजकल जो राजनीति और देश की स्थिति चल रही है, सब जगहों में करीब करीब ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का विचार और भक्ति परमार्थ इस त्यागी का विरुद्ध सब लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है, इस पर उनकी आंख ही नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि प्राचीन काल में या और अभी तक में ब्राह्मण लोग अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते थे और दूसरों को पदतलित करते थे, दूसरों को अपना गुलाम बनाते थे, उनको शूद्र बनाते थे। ये नहीं जानते कि हमारे मातंग ऋषि जी क्या थे, शूद्र जाति में, व्यास देव जी किस जाति में, शूद्र में, नारद जी किस जाति में, शूद्र में, शबरी किस जाति में, इन लोगों को हमारे अब प्रहलाद जी असुर कुल में, शूद्रों से भी नीचे, हनुमान जी असुर कुल में, अच्छा, और वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण माने पतित थे, विभीषण जी असुर कुल में, हमारे विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, इनको ब्रह्मवादी कहा ना, ब्रह्म महर्षि कहा, ब्रह्मर्षि उनको बतलाया। इस तरह से इन्होंने कहा कि शूद्रों को सेवक ब्राह्मणों का सेवक होना चाहिए, किस लिए कहा, इसका तात्पर्य लोग नहीं समझते, इसलिए कि डायरेक्ट ब्राह्मणों का ये संग पाकर के ये उन्नत हो जाएंगे, इसलिए किया था, और जातियों से भी अधिक महत्ता इनकी थी, सेवा का सुयोग ना, ब्राह्मणों का संपर्क, ब्राह्मण कौन है बतलाया, सदाचारी हो, सही शुरू हो, धन का परिग्रह करने वाला हो, माने धन ग्रहण करने वाला नहीं हो। कोई भी ब्राह्मण को उस समय का देखिए, कोई भी धनी ब्राह्मण नहीं हो, सब कुछ जो कुछ मिलता है, इस तरह से उनकी नीति बड़ी ऊंची थी, किंतु समझने वाले नहीं है, क्योंकि आंख नहीं है, इसलिए समाज पतन की तरफ नहीं है। ब्राह्मण में भी कुछ ऐसे हो गए जो जाति के ब्राह्मण, किंतु विचारों के ब्राह्मण नहीं गए, भक्ति उनमें नहीं, उसको उस पर वो जमे रहे, जहने ही हम ब्राह्मण कह जमे उसे, या अपनी वंश परंपरा से। हमारे शास्त्रकारों ने रावण को ब्राह्मण से खारिज कर दिया, जाओ तुम शूद्र से भी अधम राक्षस है ना, इतने उदार थे उस समय ये लोग। उनको यदि भारतवर्ष उस समय विश्व का सिरमौर था सब विषयों में इन ब्राह्मणों के द्वारा, दूसरे दूसरे जाति के लोग ब्राह्मण कब हुए, ब्राह्मण सभी हुए कब, विचारों के द्वारा। आजकल और उस काल की नीति ये है, उस समय शूद्रों को भी और जातियों को भी ऊपर उठा करके ब्रह्मवादी बनाया जाता था, और आजकल ब्राह्मणों को, ब्रह्मवादियों को, विचारशील व्यक्तियों को नीचे उतार करके सबको बराबर किया जाता है। आ रहा है समझ में? नीचे को ऊपर मत उठाओ, ऊपर वालों को घसीट करके, जो जिनका सदाचार है, समानता है, उदार है, गुणी है, उनको उतारो और बराबर। और पहले क्या था? नीचे वालों को
उन्नत करो।
ये दोनों में जमान अश्विन का ये चीज दिमाग में नहीं आ रही है, इन लोगों को बतलाने वाला भी इन सब चीजों को कोई नहीं है, समझ नहीं रहे। इसी तरह से भक्ति राज्य में भी, भक्ति के लिए भी आंख चाहिए, उनमें आंख नहीं है, है? आंख नहीं है, इसलिए जो अत्यंत मूर्ख लोग हैं, जो इस संसार को ही परम सत्य मान करके और इसमें आ सकते हैं, वो भगवान को भला क्या देख सकते हैं और समझ सकते हैं? इसलिए वो कह देते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, और जो भगवान के भजन करते हैं वो मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानते, इनको बायकॉट करो। अभी तो बायकॉट धीरे धीरे हो रहा है, कुछ दिन आएंगे हम लोग उस समय देखने के लिए नहीं रहेंगे, जिसमें ऐसा नास्तिकपन जब देश में हो जाएगा, जो सब लोग मरेंगे और मारेंगे परस्पर, क्योंकि जड़ विद्या के रह जाएगी, उसे आकर्षण रह जाएगा, उस समय में अर्थ प्रतिष्ठा यही सब चीज रह जाएगी, परमार्थी कोई विचार नहीं रहेगा, भगवान का विचार भी नहीं रहेगा। इसलिए इसी समय में भगवान का भजन करके चले जाओ, फिर से इस जगत में नहीं आना पड़े। तो जो भगवत भयमुख है, कुछ लोग निर्विशेष का आश्रय लेकर के ज्ञान का, अर्थात भगवान निराकार है, निर्विशेष है, निरंजन है, निर्गुण है, उनको कोई गुण नहीं है। हरिद्वार और काशी वाले जितने पंडित और महात्मा लोग हैं वो इसी विचार, भगवान का कोई रूप नहीं है, ये भगवान माया का आश्रय करके तब यहां पर कृष्ण हुए, शुद्ध वो भगवान नहीं है, शुद्ध ब्रह्म नहीं है, अशुद्ध ब्रह्म है, यह व्यवहारिक ब्रह्म है ऐसा मान लिया, तो उस भगवान में शुद्ध प्रेम नहीं है, इसलिए वो लोग उस चीज को नहीं पाए। ये भी अशुद्ध दृष्टि वाले हैं, ये लोग चरम विनाश के पथ पर पहुंचते हैं, वे लोग भगवान की प्रकट लीला को देख करके भी कंस, जरासंध, रावण इत्यादि की भांति जड़ी व्यवहार मात्र के ओर देखते हैं, भगवान की लीला के रूप में वो लोग नहीं देख पाते, इसलिए अधिकारी भेद से वो लोग दर्शन की गति ही ऐसी है। अत्यंत वैमुख व्यक्ति कृष्ण को एक दूसरे रूप में देखेगा, जैसे रंग मंच पर जहां हम बैठे हैं, इसी कंस के रंग मंच पर जब कृष्ण आसीन हुए, जबकि मल्लों से भीड़ रहे थे, उसमें स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में देखा, देवकी और मैयाओं ने देखा बेटे के रूप में, नंद महाराज ने बेटे के रूप में देखा, और उनके जो सखा लोग आए हैं सखा के रूप में देख रहे, अरे ये कैसे, ये महा असुर से ये कैसे लड़ सकेगा, ये हमारा सखा। और जो दैत्य दानव थे उन्होंने क्या देखा, साक्षात काल के समान देखा, तत्वविद जो योगी थे उन लोगों ने क्या देखा, परम तत्व के रूप में देखा, विराट रूप में देखा, और पहलवानों ने वज्र के समान देखा, और जदुवंशी ने उनको क्या देखा, परदेवता, आराध्य देवता के रूप में। इस तरह से 10 प्रकार के लोगों ने उनको 12 रूप से देखा, उसी एक ही कृष्ण को इस तरह से एक ही भगवान को देखने में दर्श, ये तो बतलाया, किंतु जो वैमुख है उनकी कितनी धारणाएं होंगी इसका कोई आदमी अंत में, वो कितने प्रकार से देखें, कोई कहेगा जल्लंपट है, कोई कहेगा ये सच्चरित्र है, कोई कहते हैं अज्ञानी है, कोई कहते हैं महाभारत के कृष्ण जो है वो आदर्श हैं, तरह से। इसमें सूक्ष्म विचार यह है, ये अपना कंक्लूजन राय देने के पहले ये सब विचार कर रहे हैं, तब राय अंत में देंगे। एक दो लाइन में ही राय रहेगी और पहले विचार कर लेंगे। PWD1, PWD2 ये सब का क्या कहा, उसमें क्या सार है, जिसमें कि क्या सार नहीं है, ये सब बतला करके तब। इसमें सूक्ष्म विचार यह है कि जैसे गोलोक मायातीत संपूर्ण शुद्ध तत्व है, गोलोक वहां माया का प्रकाश है, बैकुंठ से ही शुद्ध भूमिका आती है, वहां पर तो एकदम माया से अतीत है, इस जगत में माया से भरा हुआ है, जो कुछ हम देखते हैं सब माइक देखते हैं। उसी प्रकार के भौम गोकुल में भी, अब भौम गोकुल में भी शुद्ध और सर्वथा वो लीला तो नित्य है और मन शून्य है, जोग माया रुचि शक्ति के द्वारा जड़ जगत में प्रकटित है। कैसे प्रकट हो रही है? योग माया कैसे प्रकट किया? भगवान की इच्छा से। क्यों? जगत के जीवों के कल्याण के लिए। वो लीला आती है तो उस समय के लोग देखते हैं, फिर उसको लिपिबद्ध करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं, इसलिए उनका भी कल्याण, इसीलिए लीला प्रकट होती। प्रकट और अप्रकट विषय में तनिक भी माइक दोष हेयता असम पूर्णता नहीं है, पूर्णता सब में है, असम में निर्मलता है, कोई दोष नहीं है। केवल यहां पर देखने वाले जीवों के अधिकार के अनुसार कुछ कुछ भेद है। जो लोग शुद्ध निर्मल बुद्धि के हैं वो निर्मल देखें, जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं है वो निर्मल नहीं देख सकते। जितना ही निर्मल उनकी बुद्धि या आत्मा है उतना ही वो अधिक रूप में निर्मल के रूप में देख सके। उनको तो छोड़ दो, एक वैष्णव है, एक वैष्णव को भी सभी लोग एक समान नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते कोई, उनमें तारतम्य देखेंगे। एक ही वैष्णव में एक आदमी जागृति कुछ दोष देखेगा, कृष्ण में दोष देखा ना बहुत, शिशुपाल ने 100 दोष निकाल दिया, और उसी में जिस दोष को वो दोष कहता है उसी को सहदेव इत्यादि ने गुण कहा, उसी को गुण बतलाया। कृष्ण का गोपियों के साथ में जो चोरी की, जो राज किया, इसके लिए उसने उनकी निंदा की और इन लोगों ने कहा कि यही लीला का वैशिष्ट है, उसी को उन्नत बतलाया। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में देखेंगे। दोष मल हेयता उपाधि माया अविद्या शुद्धता फल्गु तत्व तुच्छत्व स्थूलत्व, देखने वाले जीव जड़ के भावित चक्षु बुद्धि और अहंकार में है, भगवान में नहीं है। किसी साधु को हम देख रहे हैं ना, साधु क्या कर रहा है ये हमको बड़े लोग तंग करते हैं। क्या तंग? महाराज हमको एक लड़का दीजिए, महाराज हमारी ये बिजनेस कम हो गई है, आप कुछ इसको ठीक करा, हमारा लड़का बीमार है, आप कुछ एक ऐसा कर दीजिए जो ठीक हो जाए। आप थोड़ा सा पहले कुछ पानी दिया था जिसके पानी पीने से वो ठीक हो गया, आप फिर से दे दीजिए। आप मंत्र पढ़ करके कुछ कर दीजिए, कोई मंत्र दे दीजिए ठीक हो जाए। कहने के लिए वो बाध्य है, वही तक उनकी साधु की बुद्धि है, ये उसको साथ। यदि ज्ञात अज्ञात रूप में किसी कारण से उन्होंने कुछ दिया और बच्चा ठीक हो गया तो कहें ये पक्के नंबर के शुद्ध साधु, सिद्ध साधु, किंतु शुद्ध भक्त लोग उसको नहीं मानेंगे साधु, किसको साधु मानेंगे? वो किसको मानेंगे जो कि नाम संकीर्तन में अधिक रुचि रखता है, भगवान के और भगवान के भक्तों में अधिक प्रेम है, उसको मानेंगे ऊंचा। ये लोग कोई विचित्र चीज नहीं दे, हनुमान जी थे ना, हनुमान जी जड़ी बूटी नहीं लाते, और वैसे ही उनको मंत्र से उठा देते तो क्या बात है, उठ नहीं जाते, लक्ष्मण मरे हुए थे थोड़े। किंतु देखो लौकिक नियमों का पालन करता है, वो जड़ी बूटी लाए और जैसा एक मनुष्य करता है ठीक वैसे कोई झट कोई चमत्कार नहीं दिखलाया, कोई भी चमत्कार नहीं, जरूरत नहीं है। सब राम के बल नाम के बल पर सब करते थे। वैसे भक्त यदि है शुद्ध, जादू टोना मंत्र शक्ति और विचित्रता और चमत्कारता वो नहीं दिखलाता, वो क्या करता है शुद्ध रूप में किसी जीव को भगवान के चरणों में लगा देता है, बस इतना ही उसका, भगवान के प्रति उसका अत्यधिक प्रेम होता है। यही देखे नाम में हरि कथा में उसकी कितनी रुचि है और जीवों का कितना कल्याण कर सकता है, ये देखे। और साधारण कहेंगे यदि महाराज में ऐसी कोई शक्ति जो मरा हुआ जीव भी उठ करके खड़ा हो जाए तब तो ये चमत्कार है, ऐसे चमत्कार का दे, चमत्कारिता में मत जाओ। साधु के यहां ये सब मत देखो, वो तो अपने कर्म के फल से अच्छा बुरा होगा, इसमें साधुत्व नहीं है। साधुत्व किसमें है, भगवान के चरणों में अनुराग है। इसलिए देखने वाले जीव में इस जगत, उस जगत में तो कोई भेद नहीं, किंतु इस जगत में तारतम्य है देखने वालों के आंखों में, बुद्धि में, मन में, यही में मैल या निर्मलता से भगवान की लीलाओं का दर्शन करने का तारतम्य है। ये सब दृश्य वस्तुनिष्ठ नहीं है, वो क्या है जीवों के हृदय में जो मैल है उसके अनुसार में यह हो रहा है, वो देख रहा है। और दृश्य वस्तु में ये सब दोष नहीं है एकदम, साधु में वो दोष नहीं है। साधु ने कहा, किसी ने कहा महाराज जी आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा जी कृष्णदास। आप कहां रहते हैं, बैकुंठपुर में या ब्रज में रहते हैं, गोकुल में रहते हैं। आपका पिता का नाम क्या है, अपना पिता का नाम भी कह दिया, मेरे पिता का नाम गोविंद महाराज है, गोविंद चतुर्वेदी या कुछ कह दिया। पीछे से उनका कोई सेवक हंसने लगा तो वो जो श्रोता था उसने कहा जी महाराज जी आप सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ये झूठ हुआ कि सत्य है, जागतिक दृष्टि से असत्य है किंतु वही ठीक कह रहा है। इस सत्य की उपलब्धि कौन कर, वो कह रही महाराज जी झूठ बोल रहे हैं और वो कह रहा है सत्य, परम सत्य है, सत्य से भी कोई ऊपर चीज। इसी तरह से जगत के लोग सत्य में ही असत्य देखते हैं और सत्य में असत्य में सत्य देखते हैं, वो बाध्य हैं क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। जो जितने ही निर्मल आत्मा के हैं अर्थात जितने ही दोषों से ऊपर रहते हैं उतने ही विशुद्ध तत्व को दर्शन में समर्थ हैं। सुखदेव गोस्वामी जी शुद्ध रूप में शुद्ध लीला का वर्णन कर रहे हैं किंतु उनकी भाषा में माया का मल तो है नहीं, किंतु जो परीक्षित महाराज जी सुन रहे हैं उनकी सभा में जो लोग हैं उनमें मल है, इसलिए कृष्ण की विशुद्ध लीला को समझ नहीं। उन लोगों ने कहा अरे ये कृष्ण गोपियों का साड़ी चुराता है, नंगा करके देखता है, ये उनके साथ में रास रचाता है, झूठ बोलता है, दुर्योधन को झूठ करके छल कपट से मरवाया, द्रोणाचार्य को छल कपट से मरवाया, भीष्म पितामह को कैसे मराया, छल प्रपंच करके मरवाया, किसी को सत्य से रूप में नहीं मरवाया, नहीं तो वो लोग मरते ही नहीं। भीष्म को कैसे मरवाया, द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा इति लगा दिया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा उस समय में जीवित था, वो मर ही नहीं सकता था, किंतु युधिष्ठिर से कहलवा करके आधी बात अवशंख बजा करके जयद्रथ को कैसे मरवाया। इसलिए शिशुपाल इत्यादि ऐसा कर रहे हैं, उन तत्वों की आलोचना करने वाले व्यक्तियों के अधिकतर अधिकार के तारतम्य से तत्व मल युक्त मलरहित अनुभूत होते हैं, किंतु साधन करते 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 शुद्ध भक्तों के साथ में रहते 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 जब जितना ही मैल दूर होगा उतना ही शुद्ध रूप में भगवान के निराम को कोई अनुभव करेगा, शुद्ध विचार को ग्रहण कर सकता है। जैसे एक जैसे देखो ब्राह्मण लोग प्राचीन काल से शूद्रों को नौकर बनाते हैं, क्यों? शास्त्रों के ज्ञान के बल पर, यही तो शूद्र भी क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त कर लिया लाखों वर्षों में, क्यों नहीं किया?
आधार ही नहीं
है आधार, वो खाने पीने में और इधर उधर में। अभी उनको 10 बीघा जमीन दे दो, शराब पी करके बेच देंगे तो क्या करेगा? हमारे यहां एक जमादार जी हैं, उनको 1500 और उसकी स्त्री को 1200 रुपये मिलते हैं, तो ये कितना हुआ?
27,000
की करेंगे,
27,000
भी बढ़ गया। अच्छा वो बढ़ गया, मान लीजिए 3,000-4,000 को, किंतु वो शराब पी करके एक पैसा नहीं बचता, वो महीने में ऋण करके पैसा के लिए तरसता है क्या? और यदि ये ब्राह्मण को ये रुपया मिलता तो क्या करता है? अच्छी तरह से अपना परिवार का इंतजाम करता, बाल बच्चों को भी पढ़ा लेता, सब काम कर लेता। ये गलती किसकी है? किसकी गलती है? तो ये सब विचार नहीं करेंगे आजकल के लोग, दोष देंगे सब। कुछ दिनों के बाद में होगा क्या? गुण एकदम नहीं रहेगा और यही स्थूल बुद्धि आकर के गड़बड़ हो जाए। आज पेपर में एक चीज देखा, काशीराम कोई है ना?
काशीराम है आजम के लिए।
अच्छा, उन्होंने कहा जैसे हरजनों को जो बड़े बड़े पोस्ट दिए गए हैं उनको कम करो, ऊंची जाति वालों को दो, तो न्याय और ये होगा तो ये लोग बचेंगे, नहीं तो वही लोग नंगी औरतों को घुमाएंगे ये अफसर लोग, तो बुद्धि आएगी यदि आएगी, और नहीं तो ये दृष्टियां नहीं रहने से भक्ति की ऐसा होने के लिए बाध्य है। जो इसका अनुशीलन करेंगे वेद शास्त्रों का उनकी बुद्धि प्रखर और तेज होगी और वो शुद्ध चीज को अनुभव करेंगे, और बाकी जो अनुशीलन नहीं करेंगे उनकी ये दुर्गति है, इसमें कोई कर नहीं सकता। इसलिए कहते हैं इन तत्वों की आलोचना करते करते दिन रात, आप लोग तो कुछ सुन रहे हैं इन तत्वों के संबंध में, और लोग तो जो है भगवान का भजन करने भी इन तत्वों की उपलब्धि या सुनने को ही अवसर ही नहीं मिलता। ये सब भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति होती है, उपाधि भक्ति होती है, कर्म संग सिद्धा होती है, स्वरूप सिद्धा होती है, आरोप सिद्धा भक्ति होती है, प्रेमयी भक्ति होती है, उससे भी बढ़कर के ब्रज की प्रेममयी भक्ति है, उससे भी बढ़कर के गोपियों की चरण भक्ति है। ये सब कहीं भी तुलनात्मक अध्ययन और विचार नहीं है। विचार से भौम गोकुल में जितनी प्रकार की लीलाएं प्रकटित हुई हैं वो समस्त लीलाएं माया गंध से रहित और विशुद्ध गोलोक में स्थित है, सब लीलाएं। इसलिए परकिया भाव किसी न किसी अचिंत शुद्ध भाव से गोलोक में अवश्य ही होगा, जरूर होगा, इसको जीव गोस्वामी भी स्वीकार करते हैं। जो मायाकृत समस्त लीलाएं ही शुद्ध हैं, चाहे इस जगत में है उस जगत में ही। परदार भाव परकिया भाव जोग मायाकृत है, महामायाकृत नहीं है। जोग माया जो कुछ करती हैं भगवान सत्य संकल्प हैं, वो जो कुछ सत्य संकल्प करते हैं वो जरूर सत्य होता है। ये जगत भी सत्य है क्योंकि भगवान की सत्य संकल्प बुद्धि से है, किंतु अनित्य है। इसलिए
जीव गोस्वामी
उसमें क्या देख रहे हैं, कौन से कुंजली कृष्ण स्थित कौन से लीला कर रहे हैं ये देख रहे हैं। तो एक हुआ हो गया ना,
वो मानसरोवर दर्शन हो गया, उसके बाद देखना बंद हो गया?
नहीं हुआ। मानसरोवर में उन्होंने राधा जी के मान को देखा, वो ये सब विचार नहीं करते वो सब। इसीलिए जब तक वैसा भजन नहीं होगा तब तक एमए को देखने के लिए एमए क्लास का व्यक्ति होना चाहिए, समझेगा जहां एमए है, नहीं तो कैसे समझेगा। इसलिए जी गोस्वामी को एमए मान लीजिए, वैसा होने के बाद में उसको समझेंगे। एक छात्र मैट्रिक का छात्र एमए के प्रोफेसर को कैसे वो जज करेगा, यह संभवपर नहीं है। इसी चीज को यहां बदला, इसलिए वह तत्व शुद्ध तत्व मूलक है। जी गोस्वामी को शुद्ध तत्व मूलक उन्होंने दिखाया है, किंतु अशुद्ध तत्व क्या है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसा लिखा है, पतिश्च उपपतिश्चेति प्रभेदादि विश्वतौ तत्र पति सकन्नकाय जा प्राणी पाणि ग्राहको भव भवे रागोल्लंघयन धर्म परकीया बलार्थिना तदीय प्रेम सर्वस्वम बुद्धय रूप पति स्मृत लघुत्तम अत्र जब प्रोक्तम तत्तु प्राकृत नायके न कृष्ण रस निर्जा स्वादार्थम अवतारी। और भी उन्होंने ये सब लिखा है, उसका अर्थ द्वारका में कितना हो गया, 26 हो गया। जी गोस्वामी रूप गोस्वामी ने जो गाया उसका विचार अब प्रस्तुत करें और तब फिर अपनी ओर आए। कल हम लोग रूप गोस्वामी के विचारों को
चंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय पदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं भगवान की दो लीलाएं हैं, प्रकट लीला भगवान की दो प्रकार की लीला, प्रकट लीला प्रकट लीला शुद्ध है और लीला भी शुद्ध है। कोई जगत जबकि इस माइक जगत में अवतरण करती है तो इसके देखने वाले का बहुत से व्यक्ति रहते हैं और उन व्यक्तियों में भजन का तारतम्य होता है, इसलिए अपने भजन के तारतम्य से कुछ अशुद्ध युक्त कुछ कम अशुद्ध युक्त कोई शुद्ध इस रूप में वो लोग देखते हैं। ये अवश्य ही होगा, इसलिए दृष्टिगत यहां पर मन जरूर रह सकता है। यहां तक कि यहां पर स्वरूप सिद्ध वाले भक्त भी होंगे तो भी भगवान की लीलाओं में कुछ माई कुछ संबंध जरूर देखेंगे। गोस्वामी ने अपने विचार में कहा है कि भगवान की तीन प्रकार की लीलाएं हैं, द्वारका लीला मथुरा लीला और ब्रज की लीला, गोकुल की लीला या ब्रज की लीला। इसमें ये तीनों लीलाओं में माधुर्य या ऐश्वर्य के भेद से ऐसी लीला है। गोकुल में माधुर्य है पूर्णतम रूप में या ब्रज में, मथुरा में पूर्णतम माधुर्य है, द्वारका में पूर्ण माधुर्य और द्वारका में पूर्णतम ऐश्वर्य है, मथुरा में पूर्णतर ऐश्वर्य है और मथुरा में वृंदावन में पूर्ण है, एक नीचे से एक ऊपर से। क्या समझा, किसी ने समझा कि नहीं, मिताई किस बुझले किसे बुझी छीस, तुम तो कलम चला छीस की बुझ ले बोलो,
वृंदावन
यही तो कला बोले कला एक बार अब पूर्णतम कांड से माधुर्य पार्किया तक कहा जाएगा पार्किया वृंदावन का ब्रज का जो माधुर्य है जब पूर्णतम होगा तब तो वहां तक जाएगा। आरंभ होगा सख्य से दास से ही और जाएगा मधुर तक। द्वारका में पति भाव है किंतु ब्रज सुंदरी में वृंदावन में मेरा लीक्षता बुझब की बुझवा काल्मीकि लीक्ष द्वारका में पति भाव और वृंदावन में उपपति का भाव भाव किंतु स्वरूप में अपनी बुद्धि से जगत का पारकिया भाव और स्वकिया भाव वहां पर मत ले जाए वहां पर नहीं चलेगा जगत का ये नहीं चलेगा
जगत में पति भाव
श्रील रूप सनातन गोस्वामी के सिद्धांत अनुसार जोग मायाकृत विभ्रम विलास स्वीकृत हुआ है विभ्रम विलास
विभ्रम विलास
जोग माया के द्वारा विभ्रम माने भ्रम हो गया कृष्ण पति है किंतु यहां पर भ्रम हो गया जो वो पति हमारे वो लोग हैं विशेष रूप से भ्रम जोग माया ने ये भ्रम को अभिमान के रूप में पैदा कर दिया अभिमान केवल है। तथापि श्रील जीव गोस्वामी ने जब गोलोक और गोकुल का एकत्व प्रतिपादन किया जबकि वो कहते हैं कि गोलोक उस जगत का और ये प्रकट लीला दोनों एक ही है कोई अंतर नहीं देखने में ही केवल जो कुछ है एक यहां दिखती है एक वहां दिखती है दोनों लीलाओं में तनिक भी भेद नहीं किसी भी विशेष तत्वता कहो भावगत कहो रसगत कहो कोई भी भेद नहीं है इसलिए कि वहां पर वो लीला रस का आस्वादन नहीं कर पाते हैं गोकुल में और वृंदावन में तो इसलिए इस जगत में शरीर धारण करके तब रसास्वादन करते हैं ऐसी बात गलत है ऐसा नहीं इस जगत के जीवों पर दया करने के लिए वो अपने लीला को वहां से अवतरण कराते हैं जिसको देख सुन करके उस समय के लोग भविष्य काल के लोग उससे उधर में आकर के और भजन करते करते इस महत चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दो काम होगा एक तो कृष्ण का उस जगत में जैसे लीला रस का स्वादन करते वो भी हो जाएगा और जगत के जीवों का भी उपकार भी हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो बिल्ल मंगल को ये भाव नहीं आता श्रुतियों को भी ये रोग नहीं होता और वो साधन करते वैसा नहीं दंडकारकण के ऋषि लोग जो हैं उनको नहीं होता चैतन्य महाप्रभु के लीला के समय में लाखों लोग इधर आकृष्ट हुए ये बात नहीं है इसलिए ये भगवान की कृपा है कि इस लीला को अवतरण इस चीज को जो कृष्ण लीला के समय में नहीं ले सके उन पर दया करने के लिए वो कृष्ण ही राधा जी का भाव लेकर के और सरलीकरण करके इस जगत में कलयुग में आकर के प्रसन्न लोगों को अभी हम लोगों में से लाखों में से एक आदमी को तो जो हो रहा है इच्छा हो रही है सत्ययुग में ऐसा नहीं होगा संभव नहीं था रामचंद्र जी के समय में ऐसा संभव पर नहीं था कोई ऐसा सोच नहीं सकता था किंतु चीजें थी पहले का है
पहले
का कल्प का उस समय का द्वारका लीला के समाप्त में कलयुग में उनको ये हुआ महाप्रभु जी आए हुए उस समय होगा अब तब से उनकी कुछ रुचि होकर के लोभ हुआ और लोभ होने के बाद में तब फिर साधन कर रहे थे इतने दिनों तक रामचंद्र जी की कृपा से फिर वहां से चले गए वहां प्रकट लीला में वहां पर जन्म लिया इसलिए गोकुल में सभी लीलाओं का मूल तत्व है इसे स्वीकार करना पड़ेगा
वहां पर प्रक्रिया भी किसी न किसी रूप में है। जो विवाह की विधियों से कन्या का ग्रहण करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, वे पति कहलाते हैं। जो अनुराग के वशीभूत होकर के प्रक्रिया रमणी को प्राप्त करने के लिए धर्म का उल्लंघन करते हैं, उनको पति कहते हैं। गोलोक में विवाह बंधन रूप धर्म ही नहीं है, उस जगत में विवाह की कोई प्रथा नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। क्यों? वहां तो एक ही कर्म परम पुरुष है और सब बाकी उनकी लक्ष्मियां हैं। वहां पर यह सबकी प्रथा नहीं है, वहां पर जन्म और मरण नहीं है, वहां पर साधन नहीं है, इसलिए विवाह इत्यादि विधियां भी नहीं है, वो नित्य है। कहां पर? कृष्ण नित्य किशोर के रूप में वो विराजमान है, इसलिए नए रूप में कृष्ण का वहां पर कोई विवाह भी संभव नहीं है। ये इस लीला में ही केवल दिखता है। जब वहां पर धर्म ही नहीं है तो उल्लंघन करने की बात और परगिया की भावना कहां से आएगी? इसलिए वहां पर उपपति भाव ही नहीं है। जहां पर पति भाव होता है वहां पर उपपति होता है। जहां पर पति ही नहीं है, क्यों, एक ही मात्र कृष्ण है,
प्रश्न
कोई प्रश्न नहीं है। विवाह ही नहीं है तो ठीक, पति को पति क्या, वहां पर जो है सब उनकी कृष्ण की क्रियाएं हैं, और जो गोपियां हैं उनकी माताएं हैं, और कोई है तो बहन स्थानीय है। इस रूप गोपियां मैंने समझ लो जैसे सभी कृष्ण की प्रियाएं हैं, ऐसा नहीं। जसोदा जी की भी तो सहेलियां हैं, वो कुत्तका जी की भी सहेलियां तो है ना, तो बोली दी। इसलिए वहां उस प्रकार का पतित्व भी नहीं है, उपपतित्व भी नहीं है। क्योंकि वहां पर उन गोपियों का दूसरी जगह कोई शादी ही नहीं है, उपपति भाव कहां से? कोई शादी नहीं होती किसी के साथ, जब दूसरे के साथ में किसी की शादी नहीं है तो पतिया भाव क्या है? किंतु अभिमान योग माया के द्वारा नित्य वहां है। इसलिए स्वकीय प्रक्रिया दोनों की स्थिति वहां पर, जीव गोस्वामी यही कहना चाहते हैं ये तत्व की दृष्टि से। अब इसका लोग इसको समझ नहीं पाते इस चीज को, इसलिए वो परस्पर तर्क वितर्क करते हैं। प्रकट लीला में प्रापंचिक इस जगत में जब लीला उत्पन्न करती है तो विवाह बंधन रूपी एक धर्म अवश्य है इस जगत में। जब इस जगत में जसोदा जी और नंद बाबा जब आए हुए तो उनकी शादी हुई होगी कि नहीं इस जगत में? किंतु वहां वहां नहीं, वहां नित्य है। बलदेव जी की भी यहां पर शादी हुई, कृष्ण की बहने उनकी भी शादी हुई, इस तरह से वहां पर सब शादियां होती हैं, ये धर्म है। किंतु उस जगत में ये सब नहीं है, वो जन्म के पहले से ही वो सब चीजें हैं, वहां सब नित्य है। कौन सा सोमवार पहला दिन है, ये कितने पहले, कितने वर्ष पहले ये सोमवार हुआ होगा? पहला जो सोमवार है ना, वो आज से कितने दिन पहले हुआ होगा? कुछ ठीक नहीं, पहला सोमवार सृष्टि के आदि में, तो वो कौन सा कितना दिन पहले होगा? तो ये जो ब्रह्मा है इससे लाख ब्रह्मा पहले हो गए हैं, उनमें जो पहले ब्रह्मा होंगे स्वयंभू मुनि शंभु कौन, तो वो कब है इसका कोई हिसाब नहीं है। उसी तरह से वहां नित्य काल है, अखंड काल नित्य काल चलता है। वहां पर जन्म कुंडली नहीं बनती, जन्म कुंडली यहां बनती है, वहां पर जन्म कुंडली नहीं है। इसलिए या माधुर्य इत्यादि जो धर्म है जो माया के द्वारा संगठित होता है, कृष्ण उस धर्म का उल्लंघन कर परकिया भाव का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पर केवल अभिमान। नंद बाबा सोचते हैं कि मैं इसका पिता हूं और कृष्ण क्या अभिमान रखते हैं, मैं नंद बाबा का बेटा हूं, किंतु ऐसा हुआ नहीं, जन्म नहीं हुआ, केवल अभिमान। वैसे राधा जी उनको उसी रूप में जानते हैं और कृष्ण उनको उस रूप में जानते हैं। योगमाया द्वारा प्रकृति या धर्म उल्लंघन लीला प्रपंच में ही प्रपंच द्वारा आच्छादित नेत्रों से दिखता है। प्रपंच में प्रपंच द्वारा आच्छादित प्रापंचिक नेत्रों के द्वारा ही यह दिखता है। वास्तव में कृष्ण लीला में वैसा कोई प्रभुत्व या उत्तमत्व नहीं है। वहां एक भाव परकियारस ही समस्त रसों का सार है। जैसे पृथ्वी में पंचभूतों के गुण उसमें होते हैं पूरे, आकाश में शब्द होता है और वायु में शब्द और स्पर्श, फिर आग में उसमें रूप और बढ़ जाता है, रूप वायु और स्पर्श तीन है,
पानी
और पानी में एक रस और मिल गया तो शब्द स्पर्श रूप
रस
पानी में रस। और पृथ्वी में और भी एक बढ़ गया गंध, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये पांच इसमें। उसी तरह से मधुर रस में पांचों मान चारों और उसमें रस सम्मिलित है अपने आप। और उसी का गोलोक में वृंदावन में उसका अभाव हो जाएगा नहीं है, उस रस को आस्वादन करने के लिए इस प्रपंच में प्रकटित वृंदावन में उनको आना पड़ता है, प्रकट लीला करना पड़ता है। यह सिद्धांत कदापि स्वीकार नहीं हो सकता, यह गलत है। जो वहां है नहीं और यहां हो गया, मूल ही में नहीं है, बीज में वो पोटेंशी नहीं है और वो पेड़ कैसे आ जाएगा, बीज नहीं दिया और वो पत्थर एक गाड़ दिया उससे पेड़ हो जाएगा आम का, नहीं होगा। इमली का पेड़ लगाया और उससे कटहल का पेड़ हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसलिए वहां पर उस चीज का अभाव है और इस जगत में हो गया ऐसा नहीं, जो उस जगत में है वही इस लीला में यहां पर अवतरण करती है लीला प्रकटित को, इसलिए उसको अवतार कहते हैं। इसलिए गोलोक में परम उपादेय गोलोक में परम उपादेय रसस्वादन नहीं है, ऐसा कदापि संभव नहीं है। सब अवतारी कृष्ण उसे किसी न किसी रूप में किसी न किसी आकार में गोकुल में अवश्य ही आस्वादन करते हैं। इसलिए परकियारूप धर्मलंघन प्रतीति माइक जन नेत्रों के द्वारा प्रतीत होने पर भी किसी न किसी रूप में उसकी सत्यता गोलोक में है। अब किस रूप में है, वहां पर नित्य मुक्त जो वहां पर पहुंचे हैं वो लोग इस चीज को समझते हैं। जीव गोस्वामी वहां के व्यक्ति हैं इसलिए वहां से लिख रहे हैं, अब यहां के लोगों को समझ में नहीं आती। आत्मा रामो अपि अरिंजमत, कृष्ण आत्मा राम है, आत्मा राम में भी श्रेष्ठ है जो आत्मा में ही रमण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी को सनक सनंदन सनातन ऋषि इत्यादि को आत्माराम कहा जाता, आत्माराम मुनि। उनको न कपड़े की जरूरत है, सनक सनंदन सनातन कपड़े पहनते हैं,
दिग्वसन
पांच वर्ष के कि कितने वर्ष के लड़के हैं, कि कभी कपड़े जरूरत नहीं, ठंडे में कपड़े पहनते होंगे तो
ठंडे नहीं लगते,
गर्मी में कपड़े उतार देते हैं नहीं, उनको कपड़े की जरूरत है, भूख लगती है तो नहीं भूख भी नहीं, उनको हवा की भी जरूरत नहीं है, पानी की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं, ये सब लोग ऐसे आत्मा में रमण करने पर और कोई बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती, उसी में संतुष्ट और पूर्ण रहते हैं, उनको कोई देखने की आंख खोलने की जरूरत नहीं होगी। ये कहां क्या, यदि खोलेंगे तो दूसरों पर कृपा करने के लिए, अपने लिए कोई जरूरत नहीं। अपने आत्मा में ही आत्मा इतनी उनकी आनंददायक है, अर्थात ब्रह्मानंद है, विशाल आनंद है, जिसमें वो कैसे रामचंद्र जी ने सीता जी वहां रावण के अशोक वन में बैठी है, वर्षा हो रही है, झिप 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 कर करके वर्षा की पानियां पानी और एक पेड़ के तले बैठी है, ध्यान में लगाए हुए हैं, जनकपुर का दृश्य है, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में उनका यज्ञ देखने के लिए पधार गए, बगीचे में दोनों से भेंट, सीता जी देख रहे हैं कैसे श्यामल और गौ किशोर, ये विशाल स्कंध देश, विशाल वक्षस्थल, भ्रिकुटी कैसी, भीतर से जैसे कि वो लावण्य होता है ना किसमें,
मुक्ता
में, वैसे लावण्य झांक रहा है, अभी किशोरावस्था, जैसे मदमस्त हस्ती शावक चलता है ऐसे दोनों चल रहे हैं, देख करके कोई भी आकर्षित हो सकता है। सीता जी ने मन ही मन में कहा जी यही हमारे पति हैं। इसके बाद में धनुष यज्ञ में रामचंद्र जाते हैं, वहां पर जनक जी प्रतिज्ञा के किए रहते हैं हमारी सीता को उसी के साथ में विवाह देंगे जो धनुष को उठा करके पतंचा चढ़ा करके बाण चला देगा, किंतु आज तक ऐसा कोई नहीं मिला। लोग जनक को गाली दे रहे हैं, स्त्रियां पुरुष, ऐसी प्रतिज्ञा इसने क्यों की, सीता जी को भीतर भीतर में कष्ट हो रहा है, न जाने क्या होगा, भविष्य अनिश्चित है, नर्मद लीला के लिए, नहीं तो वो सकती है जानती है। रामचंद्र जी धनुष के तरफ में बढ़ते हैं, विश्वामित्र जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, लक्ष्मण जी ने पैर जमा करके पृथ्वी को पकड़ लिया और रामचंद्र जी ने देखते देखते ही क्षण मात्र में धनुष को उठाया, कब उठाया, कब पतंचा का रोपण किया और कब वो टूट गया बीच में तीन खंड होकर के, भीषण विकराल शब्द हुआ, लोगों ने देखा कि धनुष पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, आनंद की सीमा नहीं रही। सीता जी को बुलाया गया, सीता जी हाथ में माला ली गई, उनके अंग प्रत्यंग जड़ हो गए प्रेम के मारे, उल्लास से पैर नहीं चलते, देखना चाहती हैं नेत्र नहीं खुलते, रामचंद्र जी स्थिर भाव से खड़े हैं। अब जनक जी बड़े आनंद उन्मित्त होकर के आदेश दिया इसके लिए चलो, रामचंद्र जी के गले में परमान डाल जा रहे, सीता जी का हाथ ही नहीं उठता, दोनों सर्प से दो सखियों ने हाथ को उठाया, इधर रामचंद्र जी के हृदय में कैसी स्फूर्णा हो रही होगी, उद्दीपना कैसी हो रही होगी। सीता जी ने आंख बंद करते हुए ही मानो राम को अपने हृदय में बैठा ली और गले में उन्होंने हाथ उठवाया, हाथ से उन्होंने माला छोड़ी, उसमें कैसा लग रहा है सीता जी, ये कहां हो रहा है,
अशोक वाटिका में बैठ कर,
लंका में बैठ कर। अच्छा, इसके स्मरण से सीता जी को आनंद हो रहा है ना दुख हो रहा है,
आनंद हो
गया, किंतु यदि बाहर की स्मृति आएगी तो
दुख होगा,
दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। ये सब जो चीजें हैं आत्माराम सीता जी का उस समय में जो आनंद है, उस समय यदि सीता जी को कोई छेड़ दे और उनको बाह्य ज्ञान आ जाएगा तो क्या होगा, चौंक उठेंगे, और आंखों से आंसू धक्कर गिरे। इसलिए किसी कोई संत हो, ध्यान कर रहा हो, भजन कर रहा हो, नाम कर रहा हो, उसमें जाकर के छेड़ना, बोलना, पैर छूना ये नहीं चाहिए। किंतु हमारे आदमी सब नहीं जाते, दूर से प्रणाम कर लो बिना किसी शब्द के, बस इतना है, कोई भी डिस्टर्बेंस मत करो। नहीं तो उस समय ऐसा लगता है कि उनको बाणों से कोई छेद कर दिया। अब उस समय सीताजी को कोई कहता, अरे सीताजी सीताजी। अब उनका वहां जो जनकपुरी में राम के साथ में मिलन का जो आनंद हो रहा है वो चला जाएगा ना साथ साथ। यह है आत्मारा। संत लोग क्या करते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी हो या समस्त नाथ कुमार, क्या करते हैं ऐसी लीलाओं का ही एकदम एकनिष्ठ रूप से ध्वानुस्मित रूप में समाधि में इसका दर्शन कर। यह है उनका आत्मारामत्व। किंतु इन लोगों के आत्मारामत्व में और रसिक भक्तों के आत्मारामत्व में बहुत अंतर है। भक्तों का आत्मारामत्व नहीं होता, उनका लीला रस स्वादन समाधि होती है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात इत्यादि स्वाभाविक
सहज
समाधि होती है। और इन लोगों का अपने आत्मा में जो कुछ है वही देखेंगे और आगे नहीं। अव्यक्त ब्रह्म में जो आनंद होता है उसी आनंद में, जो इस जगत के आनंद से कोटि कोटि गुणन श्रेष्ठ है, कोटि गुणी श्रेष्ठ है, जिसमें यहां पर सब प्रकार से संपन्न जो विगृहस्थ है और उसकी सुंदर भार्या है, उसके अच्छे लड़के हैं, शरीर वज्र के समान स्वस्थ है, परम बुद्धिमान है और पृथ्वी का राजत्व उसको मिले, इसको कहते हैं जगत का। इससे कोटि गुण है इंद्र का, उस इंद्र से कोटि गुण ब्रह्मा का, प्रजापतियों का आनंद, उस प्रजापतियों से प्रकृति का आनंद उसे करोड़ गुना, और उसे ब्रह्मानंद जो जीवात्मा में जो आनंद आत्मारमण करते हैं वो कोटि गुण है। और ये खद्योत के समान है कृष्ण पे सेवानंद का, जो वो अथाह अनंत समुद्र में एक जल के कण के समान ये आत्मारामत्व है। तो ये आत्माराम कृष्ण को ये आत्माराम जो कह रहे हैं, इसलिए उनका आत्मारामत्व को कोई नहीं समझेगा, जो भी लोग खुद रहेंगे यही तक समझेंगे, इसलिए उपमा दे रहे हैं, नहीं तो नहीं समझेंगे। इसलिए भगवत भक्ति में कितना आनंद होता है, कितना भगवान में आनंद है, भगवान के सेवा का आनंद जो है, और ये आत्माराम का जो आनंद है ये खद्योत माने जुगनु के समान, और वो है सूर्य के आलोक के समान। भगवान ने आत्माराम होने पर भी कोई कामना नहीं होने पर भी या आत्मारामत्व को छोड़ करके कृष्ण ने आत्मा को छोड़ दिया, क्या किया, अपनी आत्मा को रूप बना करके गोपी के रूप में और उसके साथ निर्मण किया, यह है आत्मारामत्व। इसलिए आत्माराम हम लोगों की आत्मा है। आत्मा की आत्मा क्या है, परमात्मा। उस परमात्मा की आत्मा क्या है, गर्भोदशाई। उसकी आत्मा क्या है,
कारणोदशाई।
उसकी आत्मा महासंकर्षण। उनकी आत्मा
संकर्षण,
उनकी आत्मा बलिदेव, और उनकी आत्मा
कृष्ण,
और कृष्ण की आत्मा
राधा।
ऐसे आत्मा में आत्मन्य और दशाओं रहता है, आत्म मैंने अपने में जगत का जितना सौरत का भाव है वो सबको आत्मनि अवरुद्ध रोध कर दिया। रोध कर दिया मैंने क्या, उसी के कारण से लीला उन्होंने की। जितना प्रकृति के अंदर में कम उद्दीपक चीजें हैं, जैसे सुंदर नदी का किनारा, पूर्णिमा का चांद, शीतल मंद सुगंध हवा, फूलों का विकसित होना, प्रकृति का अत्यंत श्रृंगार रूप धारण करना, ये सब जितने उद्दीपन इत्यादि ये सब हो, तो ये सब सौरथ कहलाता है। ये समस्त भावों को अपने अंदर में निरुद्ध कर और ये उन्होंने आत्मा के साथ में रमण किया। आत्मा मैंने अपने ही से अपने में वो आत्मा उनकी राग जाती है। सत्य काम कृष्ण ने, सत्य काम है, सत्य काम मैंने जो कामना की वो सत्य हो जाएगी। समस्त हाव भाव अपने हृदय में स्थापन पूर्वक रेमे ब्रजसुंदरी भी जथा अर्भक स्वप्त बिंब विभ्रमा, जैसे कोई बालक छोटा सा अपनी परछाई के साथ में खेलता है। यहां पर स्विभ्रम प्रतिविभ्रम प्रतिबिंब विभ्रम अपने प्रतिबिंब मैंने परछाई और बालक उसे कृष्ण अपने नंद भवन में खेल रहे हैं। जो सुधा भैया ने दाहिने हाथ में मक्खन दे रखा है वो पूंछ में ले रहे हैं और बाल स्वभाव की चंचलता से मणि स्तंभ को पकड़ करके बाएं हाथ में खाते हुए घूम पड़ोबल कर रहे घूम रहे हैं इसको पकड़ करके। और उसको बच्चे को देखा, बच्चे को देखा मैंने अपनी परछाई को देखा, वो भी मक्खन खा रहा है सावना लड़का। कृष्ण ने आज तक ऐसा अपना सौंदर्य नहीं देखा, आज अपने सौंदर्य को परछाई में देख करके परछाई को सत्य मान करके एक बच्चा और उससे मिताली करने के लिए चेष्टा की, पहले इसको खिला दे मक्खन और तब इसे हमारा बंधुता हो जाएगा। तो मक्खन देना है तो वो भी मक्खन दे देगा। वो जैसे जैसे कृष्ण चेष्टा कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहा है। तो कृष्ण खींच गए और छींच करके ऐसे उसको
बंदर
बंदर धोखी दी, तो उसने बंदर धोखी दी। यशोदा जी ने देखा अरे ये क्या कर रहा, लज्जित हो गए और उनकी गोद में झट दौड़ करके
कपड़े से ढक लिया।
समझ गए अरे ये तो लड़का नहीं, ये तो मेरी परछाई नहीं। उसी प्रकार से ये गोपियां उनकी परछाई नहीं कृष्ण की, अपनी स्वरूप शक्ति है, परछाई है कृष्ण की, आत्मा है ये सब, हमारी आत्मा का रूप नहीं हो सकता। उनके साथ में रेमे जथा अर्भक जैसे छोटा सा बच्चा अपनी परछाई के साथ में खेलता है। श्रीमद् भागवत में इस वर्णन के पश्चात ऐसा ही उन्होंने वर्णन किया, जैसे नन्हा शिशु निर्विकार होकर अपनी परछाई के साथ में खेलता है, वैसे रमारमण भगवान श्री कृष्ण ने बंजरियों के साथ बड़सुंदरियों के साथ में विहार किया इत्यादि शास्त्र के वचनों के द्वारा प्रतीत होता है कि आत्मरामता ही कृष्ण का अपना स्वरूप धर्म है, आत्मा निर्मण करना है। और वो आत्मा जब दो रूपों में है, एक मूर्त एक अमूर्त, जब अपने स्वरूप में रहता है तो अमूर्त, और जब वही स्वरूप से बाहर में अपना रूप धारण करता है तो इसको कहता है मूर्त। मूर्त रूप में लीला विलास होती है, अमूर्त रूप में आत्मारम है। श्री कृष्ण ऐश्वर्य पूर्ण जगत में अपनी आत्मशक्ति को प्रकट करके स्वकीय भाव से रमण करते हैं। वहां लक्ष्मी को अपनी आत्मा के रूप में लक्ष्मी जी को प्रकट करके द्वारका में रुक्मिणी सप्तभामा इत्यादि 16,000 सहस्त्र ऋषियों को 108 ऋषि पत्नियों को अपनी आत्मा को उसके रूप में प्रकट करके अपनी परछाई जैसे लड़का खेलता है वैसे उनसे। यहां पर स्वकीय बुद्धि प्रबल रहने के कारण दशरथ तक ही सीमागति होती है। वहां पर रुक्मिणी सत्यभामा सीता जी लक्ष्मी जी यह सब दासियां हैं, दासी से ऊपर नहीं पढ़ सके। यदि डांट देंगी, डांट देंगे कृष्ण या राम
सीता जी
या ये नारायण, तो लक्ष्मी जी और सीता जी सत्यभामा रुक्मिणी सब थर्रा जाएंगे, डर जाएंगे। और वहां पर वो मुस्कुरा देंगे बस, गोपियों की आंखें और मुस्कुरा देंगे बस, उनका सब कुछ खत्म हो गया। बल्कि ललिता जी को आदेश देंगे कि इस काले को यहाँ से बाहर कर दो। इसलिए गोलोक में करोड़ों करोड़ों गोपियों के रूप में प्रकट होकर स्वकीय भाव को भूल करके उनके साथ में नित्य रमण करते हैं। क्यों करते हैं? आत्मारामायण की कोई इच्छा ही नहीं है तो क्यों? चीन में तब तक ही यही स्थिति है, उसमें सब समय क्रियाशीलता रहती है। ये कुछ बोलेगा नहीं चुपचाप, ये भी नहीं बोलेगा, इसको ऐसा रख दो तो ये जब तक स्थिति है ऐसा ही पड़ा रहेगा, जब तक कोई नहीं उठाए। अच्छे चेतन चित होगी, आज ही जन्म हुआ ना, आज ही किसी बच्चे का, गाय का या बछड़ा हुआ, हिरण का बछड़ा अभी जन्म लिया, वो क्या करेगा? जब खड़ा होना उठने लगेगा, गिरेगा उठेगा, उठेगा गिरेगा, थोड़ी देर के बाद में उठ करके इधर उधर देखा, इधर जाएगा उधर जाएगा, मैया के स्तन में बिना पूछे ही चला जाएगा। ये क्रियाशीलता रहेगी।
वैकुंठ आत्माराम किया
है,
वैकुंठ जी आत्माराम,
वैकुंठ आत्माराम और लक्ष्मी जी हैं,
उन्होंने क्रियाशील की,
क्रियाशील नहीं बने, सब क्रिया ही तो रही थी, स्वकीय भाव में उनकी दास्य भाव से क्रिया है, मैंने चेतन रहने से क्रियात्मक होगा, क्रिया जरूर करेगी। पहाड़ भी चेतन माना जाता है तो पहाड़ बढ़ता है, उसमें प्राण चेतनता जरूर रहेगी।
अच्छा जी, चेतन
सखियाभिमान में रस की अत्यंत दुर्लभता नहीं होती, सखिया में वो चीज सहज प्राप्त होती है गुरु सेवा, इसलिए दुर्लभता नहीं है। अभी हमारे यहां पर मथुरा में सबसे सस्ती चीज क्या हो सकती है? सबसे सस्ता पानी है, हवा है, है ना? किंतु शुद्ध हवा पानी नहीं है, दुर्लभ कहां है?
सब्जी का
दुर्लभ होगा कब? जबकि पानी यहां मथुरा में न मिले और पानी के बुंद के लिए चढ़ते उस समय इसका मूल्य होगा। उस समय में समस्त राज्य दे करके भी, अपनी सारी संपत्ति दे करके भी एक बुंद पानी के लिए आदमी चेष्टा करेगा, किंतु वो सहज रूप में भगवान की कृपा से संभव है, इसलिए ये दुर्लभ नहीं बन रहा। अभी सोना बहुत ही मूल्यवान चीज है, एक ग्लास पानी का जितना मूल्य है और एक ग्लास सोना उसमें भर करते दो, एक ग्लास सोना में कितना पानी मिल जाएगा? क्योंकि दुर्लभ है। और यदि पानी कहीं नहीं मिले उस समय में लाखों टन सोना एक बूंद पानी के लिए भी नहीं काफी होगा ना? इसलिए कहते हैं दुर्लभता में ही किसी चीज की का मूल्य होता है। इसीलिए अनादिकाल से गोपियों में स्वाभाविक रूप से दुर्लभता के लिए परुढ़ा का भाव प्रबल रहता है और कृष्ण उस अभिमान के अनुरूप अपने अंदर वैसा ही अभिमान अंगीकार करके बंसी रूप प्रिय सखी के द्वारा सहायता लेकर के रास आदि लीलाओं को संपन्न करते हैं। गोलोक की नित्य गोलोक नित्य सिद्ध और माइक प्रत्यय से सबथा अतीत एक रसपीठ है। गोलोक क्या है? नित्य सिद्ध, जो नित्य सिद्ध होगा उसको वो समझेगा, इस जगत में नहीं समझेगा, उस जगत पर जाने पर देखेगा, अनुभव करेगा, जो वह एक रसपीठ है। इसलिए वहां अभिमान से ही रस प्रवाह सिद्ध होता है। रस प्रवाह माने रस की धारा, रस की धारा माने ये हो गया, नहीं नहीं, सारस सखी लीला, ये प्रवाह
अष्टकालीन है।
वात्सल्य रस भी वैकुंठ में नहीं है, ऐश्वर्य की ऐसी गति है, वैकुंठ में वात्सल्य रस नहीं है। माने क्या? वहां क्या वैकुंठ में नारायण का कोई माता पिता नहीं है? अच्छा, नारायण का कोई सखा है कि नहीं? कोई सखा नहीं। क्या है? वहां पर सेवक है जो हाथ जोड़ करके किंकर होकर के सब समय कर लक्ष्मी जी भी क्या करेंगी, पैर पलटेंगी दासी होकर के, बस वहां पर दास भाव और एक शांत भाव उसके नीचे, जहां मुक्ति के पांच प्रकार के मुक्तियां हैं वहां पर कुछ शांत भाव और दास भाव बैकुंठ में है। और जितने भी लक्ष्मी जी भी हैं उनका भी बैकुंठ पति के प्रति दास भाव, स्वकीय भाव नहीं। और रामचंद्र जी के पास में शांत है, दास्य है और सख्य या वात्सल्य का आधा अढ़ाई रस वहां पर माना जाता है, बस इतना है। तो ऐश्वर्य जी की ऐसी ही गति है, उसमें वात्सल्य नहीं रहेगा। परंतु परम माधुर्य गोलोक में अर्थात ब्रज में रस के मूल अभिमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वहां पर नंद यशोदा सब समय नित्य समझते हैं कि कृष्ण हमारा लाडला बेटा है। रुक्मिणी जी क्या समझती हैं, वैसे ही समझती, बलदेव जी को अपना पुत्र और इनको भी अपना पुत्र ही समझते हैं। कृष्ण एक रोहिणी जी, किसी को बड़ी मैया किसी को मैया कहते हैं, अपनी मैया को मैया और रोहिणी जी को बड़ी मैया कहते हैं, और उनका भी इनके प्रति अभिमान, समस्त ब्रजवासियों का भी अपने अपने अभिमान के रूप से ऐसा कृष्ण के प्रति भावनाएं हैं। वहां नंद यशोदा प्रत्यक्ष है किंतु जन्म व्यापार वहां नहीं है ना, जन्म नहीं है। क्यों क्यों नहीं है,
अभिमान पहले से
नित्य है और वो अभिमान केवल आज यदि किसी की शादी हो तो एक दो वर्ष के बाद में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा मान लिया कि 25 वर्ष का हो गया तो उसको प्रति पुत्राभिमान के लिए फिर उसको पैदा होना पड़ेगा। अरे 25 वर्ष से तो उसका पुत्र है ही है, नए रूप में पुत्र होने की जरूरत, एक बार पुत्र होता है पहली बार तो उसके प्रति पुत्राभिमान। वैसे यशोदा जी का कब पुत्र हुआ वो समझती कि बहुत दिन हो गए हमको बेटा हुआ, कितना दिन हो गया, एक वर्ष हो गया है, इतने दिन हो गया है, 10 वर्ष हो गया है, ऐसे वो समझती है। उनका अभिमान ये नित्य ही हमारे पुत्र हैं। सखा लोगों के कब से सखा है,
नित्य ही
वो प्रारंभ से ही सखा है, आज भी वैसे ही सखा, उम्र भी वैसे ही है। यहां पर जन्म के साथ में आयु निर्धारित होती है, ये कितना हुआ बड़ा है या छोटा है, इनसे वो बड़े हैं आयु से ये होगा जन्म से, और वहां पर क्या होता है वो नित्य ही बड़े हैं नित्य ही वो छोटे हैं। ऐसा बलदेव जी कृष्ण से बड़े हैं नित्य, सुदामा जी बराबर हैं सुदामा जी, कोई बलभद्र भद्र
भद्र सेन मंडली भद्र
ये सब बड़े हैं, कोई छोटे हैं कोई बराबर हैं, ये नित्य ही है उनका अभिमान। अभिमान के अनुसार में आयु वहां पर निर्धारित होती है। जन्म के अभाव में नंद यशोदा का जो पितृ मातृत्व इत्यादि अभिमान है वस्तुतः नहीं है, परंतु अभिमान है, बहुत पुत्र नहीं होने पर भी नित्य अभिमान है। जयति जन निवासो देव की जन्म वाल, इसी में बतलाया गया है जकात में वो करे हे जननिवास कृष्णचंद्र जी आपकी जय हो। जननिवास हो आप तो जन जन के हृदय में निवास करने वाले हैं, आप किसी के पुत्र नहीं है, तब देवकी के अरे वो तो बाद मात्र है, यशोदा का ये बाद मात्र, आप किसी के पुत्र नहीं है ऐसा अर्थ कौन करेंगे, जो साधारण व्यक्ति है साधारण भक्त हो विशेष ऐश्वर्य वाले, आप विशेष भक्त कहेंगे आप जो देवकी के पुत्र ये बाद है, असल में आप यशोदा के पुत्र हैं। ये सब रस सिद्धि के लिए अभिमान नित्य है। इसी प्रकार श्रृंगार रस में भी परोड़ा उत्पत्ति का अभिमान मात्र नित्य होने से कोई दोष की बात नहीं होती अथवा शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, वहां पर इस रूप में अभिमान है। इसलिए वहां पर विवाहिनीय तत्पति इत्यादि की बात नहीं रही, इसलिए जी गोस्वामी इसी को तत्व से विचार से सिद्ध कर रहे हैं और उसी को हमारे रसाचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी रस के विचार से सिद्ध कर रहे हैं। एक अभिमान से सिद्ध कर रहे हैं, एक कहते हैं कि जन्म नहीं है वहां, वहां पर पार्थिव भाव नहीं, और ये क्या कहते हैं
अभिमान से
नहीं, वहां पर परकिया भाव है। एक आते कि विवाह नहीं हुआ और एक आते हैं ये परकिया भाव है। एक तत्व से उन्होंने कहा, नहीं समझा, एक निगेटिव रूप में कहा सच बोलो और एक आते हैं झूठ मत बोलो, ये दो बात हुई कि एक बात,
एक ही बात,
एक ही बात हुई, झूठ मत बोलो और सच बोलो, एक ही बात, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। वो कहते हैं कि वहां पर विवाह इत्यादि के कारण परकीय भाव नहीं है, स्वकीय भाव ही वहां है, और ये कहते हैं, वो कहते हैं कि वहां पर परकीय भाव से रसास्वाद निकलते हैं। एक ही बात को वो नहीं है और ये कहते हैं ये है, क्या चीज है को है कहते हैं और वो कहते हैं ये नहीं, एक ही बात। जब ब्रज में जब गोलोक तत्व प्रकटित होते हैं, ब्रज माने इस जागतिक ब्रज, कितना बजा है जब गोलोक तत्व प्रकट होते हैं ब्रज में, इस ब्रज में मैंने बहुत ये भूतल वाले ब्रज में होम वृंदावन में, उसमें प्रापंचिक जगत में प्रपंच में दृष्टि से उक्त दोनों अभिमान कुछ स्थूल रूप में दिखाई दे पड़ते हैं। केवल अभिमान भेद यही है, केवल मात्र भेद यही है, प्रपंच की दृष्टि से इसमें लोग जो रहते हैं वो देखते हैं, वहां वाले ठीक देखेंगे, कहां वाले और यहां वाले अपने अपने अधिकार के तारतम्य से, साधन के तारतम्य से उसको शुरू। वात्सल्य रस में नंद यशोदा का पतित्व और मातृत्व अभिमान कुछ स्थूल आकार में यहां दिखता है, क्या कृष्ण उनके गर्भ से पैदा होते हैं और नंद बाबा जी दान करते हैं जो हमको पुत्र भाव बधाई के गीत बजने हैं और सब ब्राह्मणों का आदर करते हैं, गायें दान करते हैं, रुपए पैसे धन संपत्ति सब दान करते हैं, ये स्थूल रूप हो जाए। और वहां पर नित्य काल प्रतिवर्ष नए नए रूप में उत्सव करते हैं, हमारा इसी दिन को लाला उत्पन्न होगा, बस इसी यही भेद। जैसे जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग उत्सव करते हैं ना, वैसे नंद बाबा प्रतिवर्ष उत्सव करते हैं, कब से कर रहे हैं अनादिकाल, और यहां पर उत्सव कब किया, जब कृष्ण पैदा हुए ना तब किया खूब विशेष रूप में, और इसके बाद में प्रतिवर्ष करते हैं। इसलिए श्रृंगार रस में भी वो अभिमान जो है पति उपपति वाला, उपपति वाला वैसे वहां पर नित्य है, यहां पर विवाह इत्यादि के रूप में प्रकटित होता है स्थूल रूप में गोवर्धन और अभिमन्यु इत्यादि के साथ, और वहां पर केवल अभिमान है और कुछ नहीं, वही अभिमान यहां पर गोवर्धन और दूसरे गोप उत्पन्न हो जाते हैं के रूप में, और वो सब प्रत्यक्षवत वो सब प्रकट रूप में दिखलाई पड़ता है। इसको कहने पर भी समझ में नहीं आएगा, केवल ऐसे भी सुन लो, साधन भजन करते 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 इस चीज को हम लोग धीरे धीरे सुन। इसलिए वास्तव में वस्तुतः गोपियों का पृथक सत्तागत पतित्व न तो गोलोक में है न गोकुल में, यहां पर भी नहीं है, वहां पर भी नहीं है, यहां दिखता है वहां पर नहीं दिखता है, अभिमान मात्र है, वस्तुतः नहीं है कहीं।